तो फिर इसका मतलब आपने भी ये निर्णय ले लिया है कि अब आप राजगढ़ कभी नहीं लौटेंगे?
लौटेंगे क्यों नहीं, जरूर लौटेंगे। बाबा साहब ने कहा था, कभी अपने कर्तव्य से भागना मत और अधिकारों को छोड़ना मत। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी लौटेंगे और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए भी लौटेंगे, लेकिन जब तक कर्तव्य नहीं पूरे करते थे, अधिकारों पर हमारा अधिकार नहीं। इतना कहकर अखिल प्रताप चुप हो गए थे। वकील साहब उनकी बात समझने की कोशिश करने लगे। आपका कर्तव्य किसके प्रति है? वकील साहब ने कुछ देर के बाद जानना चाहा।
हमारे भाई के प्रति। बाबा साहब, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर दी है, परंतु वो अभी राजगढ़ में नहीं है, तो फिर हमारा वहां जाना भी उचित नहीं, अखिल प्रताप बोले।
वकील साहब बार बार उनसे उन पर हुए हमले की जानकारी चाहते थे, लेकिन अखिल प्रताप ने इस मैटर पर चुप्पी साध ली थी। वो कुछ कहकर शत्रुप्रदेवी और विक्रम प्रताप के लिए कोई मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि बातों ही बातों में वकील साहब दो तीन बार ये कह चुके थे कि अगर शत्रुपा देवी उनका अधिकार उनको देने से इनकार कर रहे हैं, तो वो इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, और इस हमले के लिए वो शत्रुपा देवी को नाम से अभियुक्त भी बना सकते हैं। बस अखिल प्रताप को आगे आना होगा, और यही अखिल प्रताप नहीं चाहते थे, अपने भाई के खिलाफ ही खड़ा होना। इसलिए उन्होंने न वकील साहब का साथ दिया, न उनके साथ लौटकर राजगढ़ आए। पर ऐसा नहीं था कि इसके बाद वो राजगढ़ आए नहीं थे। वो दो तीन बार चोरी छुपे राजगढ़ आ चुके थे, लेकिन किसी से मिले नहीं, क्योंकि वो अपनी पहचान को कितना भी छुपा ले, खुद को छुपा नहीं पाते थे। उनका रंग रूप, बोलने का चलने का ढंग, सब कुछ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, पूरी तरह से अभिमन्यु प्रताप के रंग में ढलता जा रहा था। एक तरफ से 22-25 की उम्र में आते आते वो अपने पिता की जीती जागती तस्वीरी बन चुके थे। राजगढ़ पैलेस का रहस्य अभी तक बना हुआ था। देवी भक्ति में डूबे हुए अखिल प्रताप धीरे धीरे मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट की तरफ झुकते जा रहे थे। वो भारत की पुरातन संस्कृति को आधुनिक विज्ञान के साथ स्थापित करना चाहते थे। ऐसे में वो हायर स्टडी के लिए विदेश चले गए। वहां से वापस आने के बाद राजगढ़ की मिट्टी ने उन्हें बुलाया था। ऐसा नहीं था कि ये सपने केवल विक्रम प्रताप तक ही सीमित थे, अखिल प्रताप को भी इनकी आहट मिलती रहती थी। ऐसे में जब इस रहस्य को खोजने के लिए वो एक बार राजगढ़ आए थे, तो जिसको ना पहचाना था, उसने भी उन्हें अभिमन्यु प्रताप की छवि देखकर पूछ लिया था, क्या आप पैलेस से हैं? उसके बाद उन्होंने नोटिस किया था कि जैसे ही उनकी राजगढ़ में कदम रखने की खबर पैलेस वालों को हो जाती है, पैलेस वाले उनको जान से मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। भगवान जाने ये किसके आदमी थे, पर उन जितने दिन वो राजगढ़ में रहे थे, अपने ऊपर कुछ संदिग्ध लोगों की नज़र और एक खतरा उन्होंने महसूस किया था, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल आए। महल से उनका मोह भंग हो चुका था, क्योंकि अब महल में उनके लिए कुछ बचा भी नहीं था। उन्हें पता चल चुका था कि उनके बाद शत्रुपा देवी ने विक्रम और विक्रम विकल्प को न्यूयॉर्क भेज दिया है, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिल प्रताप भी अपनी रिसर्च और अपने कामों के लिए देश विदेश घूमने में निकल चुके थे। वो विक्रम प्रताप के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार कर रहे थे कि कब विक्रम उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि पैलेस पर रिसर्च के दौरान इतना तो वो जान ही चुके थे कि जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो उनके और विक्रम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और आज नहीं तो कल ये सामने आएगा। बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आज उनका भी इंतजार पूरा हो चुका था, इसलिए वापस भी आ चुके थे। पता नहीं ये कैसा तूफान है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपदा आने वाली है, समर्थ सिंह बोले। आपदा आने वाली नहीं है, बल्कि आ चुकी है, ये तो उसका स्वागत हो रहा है, उनके पास से गुजरते हुए वैशाली नाचते हुए मुस्कुराई। कोई आपदा और विपदा नहीं है, रेगिस्तान में पानी का बरसना बहुत ही शुभ शगुन होता है, और ये आसमान हमारे आने की खुशी में झूम झूम कर बरस रहा है, विकल्प अपने कॉलर खड़े करते हुए बोला। समर्थ सिंह ने अफसोस से अपना सर हिलाया, पर शत्रुपा देवी इन दोनों की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि वो जान रही थी कि समर्थ सिंह गलत नहीं बोल रहे थे। आज आसमान से इस तरह से आपदा बरस रही थी जिस तरह से दो बार पहले भी बरस चुकी थी, जब उनके पति के द्वारा वो आपदा इस महल में आई थी तब, और जब उसी रात उन्होंने अखिल प्रताप को धक्के मारकर इस महल से बाहर निकाला था, तब उस दिन भी आसमान इसी तरह से फूट फूट कर रोया था जिस तरह से आज वो रो रही थी। राजगढ़ में प्रवेश करते हुए अखिल प्रताप ने भी मौसम के बदलते हुए इस रुख को महसूस कर लिया था। इसी मौसम के कारण उन्हें आने में देर हो गई थी, और करीब रात के 9 बजे उनकी गाड़ी सीधे जाकर सरकारी गेस्ट हाउस के दरवाजे पर लग गई। विभाग के द्वारा गेस्ट हाउस को उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उनके रहने खाने और ठहरने का इंतजाम हो चुका था। गाड़ी से निकलकर गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर अखिल प्रताप ने इस आसमानी तूफान को गौर से देखा। उनके दिल और दिमाग, इसके साथ सिक्स्थ सेंस भी कुछ गड़बड़ होने का इशारा दे रही थी। वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी जेब का फोन बजा। हेमा काली कल्याणी, इन सब चक्करों में तो हम इन्हें भूल ही गए थे, अपने सर को मसलते हुए अखिल प्रताप बोले, और तुरंत फोन को पिक करते हुए कान से लगाए। तभी उनके कानों में एक मिश्री जैसी आवाज सुनाई पड़ी, क्या पतिदेव, क्या हालचाल है? हर हर महादेव।